ओम शांति। भ्राता जी के क्लास में सार रूप में सारी बातें हम सबको प्राप्त हो ही गई हैं, फिर भी अनुभव ऐसा कहता है कि जब तक हमारे मन में जो प्रश्न है, जो बातें हैं, चाहे वो पुरुषार्थ से संबंधित हैं, चाहे परिवार से या व्यवसाय से, यदि वो संकल्प, वो समस्या, वो विघ्न, वो प्रश्न मन में रह जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया। इसीलिए आप सबने जो प्रश्न भेजे हैं उसमें अनेकों के भी प्रश्न आ जाएंगे, तो वो प्रश्न अब मैं भ्राता जी के सम्मुख रख रहा हूं। भ्राता जी, एक बात जो आपने कही योग के कि निरंतर मिलन का अनुभव होता रहे, सुख का अनुभव होता रहे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न योग से जुड़े हुए ही हमारे पास हैं कि योग जब हम करते हैं तो मन में हमें क्या बोलना है वो हमें थोड़ी विधि बताएं, योग का चार्ट हम कैसे बढ़ाएं, और जब हम कार्य करते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं, और साथ ही कईयों ने ये लिखा कि जब हम योग में बैठते हैं तो खास नींद आ जाती है, बाकी समय नींद नहीं आती लेकिन योग में बैठते ही पता नहीं कहां से आ जाते हैं।
किस किस को योग में नींद का सुख मिलता है? बस हाथ ना उठाओ, मैं उठवाऊंगा। नहीं,
टीचर ईमानदारी से सबने
नींद का सुख भी तो बड़ा सुख है। सवेरे जब हम योग करते हैं, मेरा लक्ष्य ये रहता है कि सबको ये पता चल जाए कि हमें क्या क्या संकल्प करने हैं। भूल जाते हैं आप, रिकॉर्ड होता रहता है सब कुछ ले जाना, और घर में रोज सवेरे कमेंट्री से ही योग कर लेना। तो धीरे धीरे ये चीजें ऐसी हैं, जितना अनुभव बढ़ता है नए नए संकल्प आते जाएंगे जो मन को मगन करेंगे बाबा के प्यार में। लेकिन शुरुआत में सीखना होता ही है, इसलिए क्या क्या संकल्प करें वो फिक्स नहीं, अलग अलग करेंगे। रोज की कमेंट्री जो हम भी सवेरे करा रहे हैं उससे आप सीख ही रहे होंगे। पर कुछ माताएं ऐसी होती ही हैं कि 10 दिन योग से कमेंट्री से योग करा दिया सवेरे, फिर भी आके पूछते हैं भाई जी सवेरे योग कैसे करें। तो ये तो होता है, मेरे पास आती रहती है ना, बहुत भोली माताएं, कही क्या कहें हम योग में बाबा को, ऐसे भोलेपन से पूछती हैं। तो सीखते जाएंगे। नींद ना आए, अगली मुरली जिसकी मैंने चर्चा की जो संडे को आ रही है, उसमें बाबा ने ये बात भी कही बिल्कुल ऐसे ही कि वैसे नींद नहीं आती और योग में बैठते ही बच्चों को नींद आ जाती है, क्योंकि योग को भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास नहीं करते। बाबा ने थोड़ी बड़ी बातें कही हैं उसमें, नयों के लिए वो थोड़ी कल्पना लगेगी, मैं दो बातें बता देता हूं, समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बाबा ने कहा, सुनेंगे आप तो मैं बता रहा हूं ताकि जब आप सुनेंगे तो पक्की हो जाएगी। कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होकर वृक्ष को सकास दो। अभी आप कहेंगे कल्प वृक्ष के ऊपर खड़े होंगे गिर नहीं जाएंगे? गिरेंगे नहीं, फरिश्ते रूप से। सृष्टि चक्र के ऊपर खड़े होकर शक्तियां दो, कभी बीज रूप, कभी लाइट हाउस, कभी फरिश्ता स्वरूप, कभी सुख संवतन में, कभी परम धाम में। ये सब बातें आप सुनेंगे, वो अच्छे अभ्यास करेंगे तो नींद नहीं आएगी। कईयों को नींद इसलिए भी आती है क्योंकि उनके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है, बचपन से ही ब्रेन का कोई केंद्र बंद है, एक्टिव नहीं है। इसलिए मैं उसके लिए एक फिजिकल राय देता हूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम रामदेव जी ने खूब सिखा दिया, 5-7 मिनट रोज सवेरे कर लिया करो। वो उसको नहीं बताते पर मैं बता रहा हूं, बताना तो उनको चाहिए। इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा आपका कुछ ही दिनों में, नींद नहीं आएगी, फिर भी जिनको नींद आती है वो चलते फिरते योग करें सवेरे। लेकिन मैंने नींद के ऐसे महारथी भी देखे, चलते फिरते भी सोने लगते हैं। जिनको ज्यादा ही आती है अनकंट्रोल, ऐसा भी होता है। इसलिए रात को खाना थोड़ा कम, खाना अपना थोड़ा सा खुद सोच लें, जो भारी करता है उस खाने को रात को विशेष रूप से न खाएं, टाइम पे सो जाएं। और बाबा ने एक बात और कही है जो थोड़ी गुह्य है। अमृत वेले पर चर्चा करते हुए बाबा ने कभी कहा कि जो बच्चे सारा दिन बाह्य मुखी रहते हैं तो माया अगले दिन अमृत वेले उनसे बदला लेती है, सुला देती है, सुख नहीं लेने देती। इसलिए सारा दिन कुछ ना कुछ, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, थोड़े थोड़े भी अभ्यास चलते रहे। और नहीं तो मैं आत्मा हूं, जिसको कुछ नहीं आता, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यहां बैठी हूं, मैं आत्मा हूं, यही कर लो, इससे ही योग अच्छा होने लगेगा, नींद खत्म हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस करनी है तो सफल हो जाएंगे।
कल की मुरली में बाबा ने कहा कि अब उड़ो, दौड़ो नहीं। तो उड़ना माना क्या? उड़ने में बाबा ने कहा उड़ो, उड़ो,
उड़ो,
दौड़ो नहीं, उड़ो। तो ये उड़ने में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें आते हैं?
उड़ने का अर्थ है, जब ये बात अव्यक्त बाबा ने शुरू की, पहले था साकार में बाबा कहते थे तो चढ़ती कला तुम्हारे बहाने सबका भला, ये सिखों का स्लोगन है गुरु ग्रंथ साहब का। तो तुम चढ़ोगे तो सारे संसार का भला होगा। फिर अव्यक्त में कुछ समय के बाद कहा तेज गति से चलो, फिर कहा हाई जंप दो, और फिर चौथी बात आई उड़ती कला में आ जाओ। तो हाई जंप कोई ऐसा तो नहीं ना जैसे आजकल एथलेटिक्स देते हैं, कोई हमें कूदना है। उड़ती कला का ये भी अर्थ नहीं हम कोई उड़ेंगे, ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब। इसका अर्थ है बहुत तेज पुरुषार्थ करो, कि जो पुरुषार्थ 50 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में हो जाए, इसको कहेंगे उड़ती कला, तेज गति से पुरुषार्थ। उसके लिए अपने को बहुत हल्का करना, एक धुन लगा देना पुरुषार्थ की, एक लक्ष्य बना लेना कि 1 साल में यहां तक पहुंचना है। और जो अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं उनको सिंपल विधि अपनानी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे के कह रहा हूं, आप दूसरे उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। आप लक्ष्य बना लें, मुझे इस साल के अंत तक अपने योग के चार्ट को 8 घंटे पहुंचा देना है, सितंबर टू सितंबर अगला। अब उसके लिए 3-3 मास का लक्ष्य रख लें, पहले 3 मास में 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे। अब 3 मास में 4 घंटे कैसे करेंगे? तो 15-15 दिन की प्लानिंग करो। ये तरीका है एक महान लक्ष्य को पाने का। तो निरंतर हमारी प्लानिंग चले, छोटी छोटी प्लानिंग। अब बाबा ने हमें लक्ष्य दे दिया, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, वो लक्ष्य कितना काम करता है सब जानते हैं। लक्ष्य दे दिया कर्मातीत होना है, संपूर्ण बनना है, भूले रहते हैं छोटा छोटा लक्ष्य। मैंने जब अपने पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता लाई थी, बहुत साल पहले की बात है, तो मैं रोज का भी लक्ष्य बनाता था, तो उससे रोज नई नई उमंग रहती थी। तो ऐसा करने से उड़ती कला माना तेज पुरुषार्थ हो जाएगा।
बातें इतनी सारी हैं जो बाबा हमें देते हैं, चाहे वो मुरली में है या अव्यक्त मुरली में है, हमारी बड़ों की क्लासेस में है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी बातें पुरुषार्थ में शामिल करें, कौन सी छोड़ें।
मैंने सरलता से उत्तर दे दिए हैं, 4 पिलर जो हम बनाएंगे, स्वमान, आत्मिक स्थिति, इन 2 से ही चालू करो। बाकी कभी मुरलियां संतुष्टता पर चलेंगी, प्रसन्नता पर चलेंगी, निरहंकारिता पर, मैंपन के त्याग पर, वो सब हमारी धारणाएं हैं, वो योग से आती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा उन पे ध्यान देना है। उसके लिए कोई हम अलग पुरुषार्थ करेंगे उसकी जरूरत नहीं रहती, हमें ध्यान देना है, मुझे संतुष्ट रहना है, भाई इच्छाएं छोड़ देनी है, सहज होगा। लक्ष्य बना लेंगे, संतुष्ट रहने लगेंगे। लक्ष्य बना लिया, मुझे मैंपन से खुद को मुक्त करना है, जहां भी मैंपन आएगा समझ में आएगा मैं आ गया, छोड़ते चलेंगे तो वो तो साइड में स्वतः ही चलता रहेगा। आप धारणाओं की भी एक सुंदर लिस्ट बना सकते हैं। मैंने अपने जीवन में शुरू में 16 सुंदर धारणाओं की लिस्ट बनाई थी, उन दिनों जिन धारणाओं पे बहुत चर्चा होती थी। वो धारणाएं थोड़ी बड़ी हैं, जैसे अनासक्त वृत्ति, कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त, उपराम वृत्ति, नष्टो मोहा, न्यारापन और प्यारापन, साक्षी भाव, आत्मिक दृष्टि, सबके लिए शुभ भावनाएं, प्योरिटी, ये बड़ी जो धारणाएं हैं। तो जब उनको हम लक्ष्य में रख लेते हैं तो धारण करना सहज हो जाता है। वैराग्य, त्याग, ये हमारी बड़ी धारणाएं, एक है गुण, दूसरी है ये बड़ी धारणाएं, तो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जैसे ही हमारा योग बढ़ेगा, स्वमान बढ़ेगा, ये सब चीजें आती रहेंगी जीवन में, हमें बस जरा सा ध्यान देना होगा। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, किसी को थोड़ी गड़बड़ हो तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ना गिर न जाए, बस चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो सब धारणाएं आ जाएंगी।
कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ धारणाओं पे अभ्यास करते हैं, उसके बाद दूसरी धारणाएं लेते हैं, तीसरी लेते हैं, तो जो पहले वाली हैं वो थोड़ी हल्की होती जाती हैं या छूटती चली जाती है।
इसलिए मैं आपको 5 धारणाएं बताता हूं, उन पे आप ध्यान देंगे सब आ जाएगा। संतुष्टता, सरलता, निरहंकारिता जिसमें मैंपन का त्याग आ जाता है, सभी के लिए स्नेह और शुभ भावनाएं, और प्योरिटी, 5 चीजों पे ध्यान देने से इनके पीछे पीछे सब आ जाएंगे। संतुष्टता, सरलता, निरहंकारिता, स्नेह और शुभ भावनाएं, प्योरिटी।
एक प्रश्न है बेटा जी कि क्या मुरली पढ़ना सुनना ही पर्याप्त है या हमें ज्ञान की दूसरी लिटरेचर्स का भी अध्ययन करना चाहिए?
देखिए, शुरू में मनुष्य को अपने ज्ञान वृद्धि के लिए बाबा की जो बहुत सारी किताबें हैं वो पढ़ लेनी चाहिए। हमने भी पढ़ी बहुत, उन दिनों तो जगदीश भाई की थोड़ी सी किताबें होती थी, उससे ज्ञान बहुत गहराई में आ गया। उन दिनों की किताबें अलग होती थी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस पे एक छोटी सी किताब, योग की विधि इस पे एक छोटी सी किताब, गीता का भगवान कौन है इस पे छोटी सी किताब, मन की शांति शायद आज तक भी चलती है।
जी जी,
वो अनादिकाल से चली आ रही है, सबसे ज्यादा बिकी है दुनिया में वो छोटी सी किताब। फिर गुणों की धारणा, उन दिनों यही किताबें थी, छोटी होगी 20-20 पेज की। अब बहुत सारी किताबें हैं जो आपको अच्छा लगे, वो सब भी मुरलियों से जुड़ी हुई बातें हैं, दादी जानकी की क्लासेजों का संग्रह है और कुछ चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहने से ज्ञान सूक्ष्मता से समझ में आता जाएगा। इसलिए केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें केवल मुरली पढ़ लेनी है, मुरलियों का विस्तार। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं बचपन से ही गीता पढ़ता था, 8वीं क्लास में था और गीता खरीदी और पढ़ी। कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती थी लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। उसमें से 2 बातें बहुत कैच होती थी लेकिन समझ में नहीं आती थी, निष्काम भाव, समर्पण भाव। जैसे जैसे अव्यक्त मुरलियां चली और यही दोनों गुह्य बातें बाबा ने बहुत बार सुनाई, तो गीता की गुह्यता समझ में आ गई, नहीं तो समझ में नहीं आती थी। और तब मुझे समझ में आया कि गीता के जो विद्वान हैं दुनिया में उनको गीता कितनी समझ में आती होगी, शाब्दिक अर्थ समझ में आता, उसकी प्रैक्टिस होती नहीं। बाबा ने प्रैक्टिस कराई, इसलिए जो ये दो बड़ी चीजें हैं हमारे जीवन की, निष्काम भाव और समर्पण भाव, जो बाबा के सुंदर शब्द होते हैं मुरली में, मुझे एक लाइन बहुत प्रिय लगी अभी बाबा की मुरली में, 15 दिन पहले आई साकार मुरली में, बच्चे अपने को मेरे हवाले कर दो। कितने सुंदर शब्द हैं, भगवान बोल रहा है अपने को मेरे हवाले कर दो, मजा आ गया सुन के। तो ये समर्पण भाव है, बड़ी गुह्यता है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान की किताबों पे भी ध्यान देंगे।
ये एक MBBS स्टूडेंट का प्रश्न है बेटा जी, लेकिन लगता है कि बहुतों का ये प्रश्न होगा कि जब मैं स्टडी कर रही हूँ या फिर व्यवसाय कर रहे हैं तो समय बहुत कम मिलता है, तो ऐसा क्या करें जो हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है।
देखिए, कार्यों में रहने वालों को, या घर में भी किसी का परिवार बड़ा हो, या सेंटर में भी बहुत सेवाएं होती हैं, ये बात तो प्रैक्टिकली सत्य है कि समय तो कम मिलता है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जो कर्मों में अभ्यास करें। इसलिए कर्म योगी बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधि है। मान लो आपको अपने घर में या सेंटर में सफाई करनी है, आनंद लो सफाई का, 1 घंटा लगाओ, 1-2-3 अच्छे अभ्यास ले लो, मुझे ये अभ्यास करते हुए सफाई करनी है। ये नहीं कि उनको लगातार रटना है। मान लो आपने संकल्प कर लिया, मेरे साथ बाबा है, बस समझ लो सफाई करने में 5 बार याद कर लेना है। 1-2 संकल्प और ले लिया, मैं महान आत्मा हूं, ऐसे 2-3 अभ्यासों में सफाई करते रहो तो आपको लगेगा ही नहीं कि टाइम नहीं है। आप भोजन बना रहे हो, हम कुमारों को बहुत सिखाते हैं बात, क्योंकि कुमार ज्यादा शिकायत करते हैं, भाई सवेरे उठो, ये करो, वो करो, तैयार करो, कपड़े भी धोने, प्रेस भी करने, खाना बनाना है, फास्ट लाइफ, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा 2 घंटा लगाओ खाना बनाने में, 1 घंटा सवेरे 1 शाम को, 2 घंटे का आनंद लो, ये भूल जाओ कि काम है, काम नहीं, आनंद है, तपस्या का समय है, गीत बजा लो अच्छे, कोई क्लास पसंद हो, मुरली पसंद हो, वो चला लो, मजे में रहते हुए आनंद पूर्वक भोजन बनाओ, देखो कैसे आप कहते हो कि टाइम नहीं मिलता। एक भाई बाइक पे जाता है, टीचर है, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में लगता है, कहा मेरे तो 2 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं रोज। मैंने कहा चले कहाँ जाते हैं, वो तो आपके पास हैं। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूं, याद करो 10 बार याद करो 1 घंटे में, चलते जाओ, लाइट माइट फैलती जा रही मेरे से, उसको एक ही दिन में आनंद आ गया। तो एक सुंदर प्लान बनाए कर्मयोग का, समय नहीं है ये कह के छोड़ न दे। बाबा थोड़ा ही सुनेगा कि बाबा मेरे पास समय नहीं था, बाबा कहेगा तो मेरे पास भी समय नहीं है, अब कहेगा या नहीं। तो ये बहाना नहीं देना है, जिसको पुरुषार्थ करना होता है वो अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेते हैं।
मेरे किसी कर्म से या वाणी से अन्य आत्मा को दुख होता है तो उसे हम क्या समझें, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ या फिर मेरा हिसाब बन गया,
सूक्ष्म पाप बन गए। अगर हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचता है, अगर हमारे द्वारा किसी की स्थिति बिगड़ती है, हमारे शब्दों से किसी का योग टूटता है, किसी की खुशी जाती है, तो सूक्ष्म विकर्मों का बोझ हमारे ऊपर चढ़ता ही जाएगा, उसको उतारना बहुत भारी काम होगा। इसलिए अपनी वाणी को मधुर, हम सबके सहयोगी बन जाएं, गुड फ्रेंड बन जाएं, सबको आगे बढ़ाने वाले, स्थिति को ऊंचा बनाने वाले बन जाएं, ये होंगे बहुत बड़े पुण्य। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, अधिकतर नंबर एक चीज पर मिलेंगे कि आपने कितनों को योग्य बनाया, योगी बनाया। तो हमारे बोल, हमारा व्यवहार दूसरों को मदद करने वाले बन जाएं, हम ऐसा बोलें दूसरे खुश हो जाएं, हम ऐसा बोलें दूसरों को उमंग आ जाए, हम ऐसा बोलें उनका जलता हुआ चित्त शीतल हो जाए, ये बहुत बड़े पुण्य होंगे।
तो एक बड़ा प्रश्न यही रहता है दत्ता जी, जो आगे है कि अपनी पुरानी आदतों संस्कारों को कैसे बदलें और दूसरों को भी हम कैसे बदलें यदि चाहते हैं तो।
इसका मेरे पास पहला उत्तर है, अपने पुराने संस्कार स्वभाव को क्या हम बदलना चाहते हैं सच्चे मन से, पूछ लें सभी अपने से। और क्या हमें पता है कि इस चीज को बदलना है। बहुत लोग अपने परिवारों में कड़वा बोलते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो कड़वा बोलते हैं। वो क्या सोचते हैं, बोलना ही पड़ेगा नहीं तो ये सुधरेंगे नहीं, ये मेरे सिर पे चढ़ जाएंगे, ऐसा ऐसा मान्यता दे के रखते हैं। तो अपनी गलत चीज को भी मैं राइट हूं ऐसा मान लेते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए मुझे अपने किस संस्कार को बदलना है। ज्ञान के द्वारा बदलेंगे, चिंतन से, योग भी उसमें मदद करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मदद होगी पांच स्वरूपों के अभ्यास की। अपने देव स्वरूप को सामने लाओ, रोज एक बार ही लाओ, ज्यादा नहीं, और संकल्प दो मैं ये हूं ये नहीं, मेरे संस्कार ये हैं ये नहीं, बदलते जाएंगे, तेजी से बदलेंगे।
आपने इविल सोल्स की भी बातें कही कि वो उनका भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो यदि किसी के अंदर दो तीन प्रेतात्मा प्रवेश करती हैं तो उससे मुक्ति के लिए लौकिक में क्या तांत्रिक आदि का सहारा लेते हैं तो ब्राह्मण भी उनका सहारा ले सकते हैं या नहीं, या फिर हम ब्राह्मण किस विधि से उन्हें मुक्त करें।
ये भटकती आत्माओं का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने आपको बताया बहुत आती हैं सेंटरों में भी, बुरे लक्ष्य से नहीं आती, शांति पाने आती हैं, लेकिन किसी से उनका हिसाब किताब हो तो उनको तंग भी करती हैं। इसलिए दूसरों को उनको योग का सहयोग देना चाहिए। आजकल आत्माएं आके कह रही हैं हमें मुक्त करो, किसी के तन में आके बोलती हैं हमें मुक्त करो, ऐसे में 21 दिन योग कर देना चाहिए उनके लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर मुक्ति दाता हूं, इस संकल्प से। वो नहीं कर सकेंगे जिन पर उनका प्रभाव है, कोई और करेगा। मुक्त होती आत्माएं मुझे बताती हैं, कई बहने सेंटर वाले भी घरों वाले भी, कि आत्मा मुक्त होके गई है, धन्यवाद देकर गई है, बोल के गई है हम जा रहे हैं, बाबा हमें बुला रहा है, बाबा का ज्ञान दे दिया था। अपने अपने घरों में सभी एक नियम छोटा सा बना ही लें, पानी चार्ज करके रोज छिड़केंगे घर में सोने से पहले, पानी को दृष्टि देकर 21 बार संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, फिर छिड़क दो। बाकी दो बातें मैंने बता दी, झंडे की और कास्केट की। अगर कोई भारी केस हो तो बाहर भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि कई बार हिसाब किताब इतने कड़े होते हैं या वो आत्मा इतनी पावरफुल होती है कि उसको निकाला जाना मुश्किल होता है, तो किसी की मदद भी ले लेनी चाहिए।
आपने झंडे और कास्केट की बात कही, तो क्या इसके लिए भी कोई विधि है कि हम झंडा घर में लगाएं या कास्केट लगाएं, तो कुछ नियम भी पालन करें या कोई भी लगा
नहीं,
सकता?
नहीं, कोई तो नहीं लगा सकता। बहने झंडा उन्हीं के घरों पे फहराती हैं जो पवित्र हैं, भले ही सब न हो, पर अगर आप एक ज्ञान में चलते और आपकी पवित्रता की धारणा है तो झंडा उसी के घर पे शोभेगा। बाहर जो कास्केट लगाने की बात है वो कोई भी लगा सकता है।
फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन में कितने आते हैं, 108 या 16,000? 108
फर्स्ट डिवीजन, 108 पास विद ऑनर 8, 16,108 सेकंड डिवीजन वाले। फर्स्ट पास विद ऑनर होने में सिंपल आपको बात बता रहा हूं बाबा के महावाक्यों से, क्योंकि शुरू में इन बातों पर बहुत अच्छी चर्चाएं बाबा करते थे। बाबा अव्यक्त बाप दादा अपने कमरे में भी बहुत बार आए और हम लोगों को बिल्कुल सामने मिलने को मौका मिला, तो बाबा ये बातें बताया करते थे। असरतन माना निरंतर योगी, असरतन माना आठों शक्तियों से भरपूर, असरतन माना संपूर्ण प्योर। 108 8 घंटे योग, प्योरिटी में भी विजयी, मैं पंच से मुक्त निरहंकारी। और जो 16,000 हैं बाकी, वो किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी का योग अच्छा। राम के लिए बाबा ने कहा, आप सबको क्लियर हो, राम के लिए बाबा ने कह दिया था कि राम तो फेल हुआ। तो कई लोग सोचते हैं फेल कैसे हो गया भाई, यह पवित्र बन गया क्या हुआ? राम फेल हुआ, मुरली में ही उत्तर है, राम फेल हुआ योग में, सेवा में परफेक्ट, योग में कच्चे। एक बात और सुना देता हूं, प्रश्न में तो नहीं आएगा, मुझे अच्छी तरह याद है। बाबा आए, रात्रि क्लास थी, दीदी मनमोहिनी सामने बैठी थी और कहा, दीदी ये बताओ राम सतयुग में आएगा? तब तक हम लोग सभी यही मानते थे कि नहीं, त्रेता में ही आएगा, शुरुआत त्रेता से ही होगी। शाम को उत्तर नहीं दिया बाबा ने, सवेरे जब शिव बाबा आए तो उत्तर दिया, राम और सीता सतयुग के प्रारंभ से ही आएंगे, लक्ष्मी नारायण के फर्स्ट क्लास दास दासी होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासी का अर्थ है महलों के मालिक, सभी दास दासियों के राजा, राजा वो वहां भी होंगे, महलों के राजा।
जी, ये बहुत सुंदर स्पष्ट हो गया। तो यहां सब जो बैठे हैं पास विद ऑनर वाले कौन कौन है?
कोई हिम्मत नहीं रहता, एक पुराना।
अच्छा, फर्स्ट डिवीजन वाले, फर्स्ट डिवीजन, उमंग उत्साह तो दिखाओ। चलिए, एक अच्छा लक्ष्य लेकर के जाएंगे यहाँ से। ब्रदर जी, अब यही एक बात है कि ज्ञान सरोवर में हमें योग भट्टी में बहुत सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं, उमंग उत्साह है, लेकिन यही अनुभूतियां लौकिक में कार्य व्यवहार में जाकर बनी रहें, क्या करें?
मैं तो सबसे छोटा जो तरीका है वो आपको बता रहा हूं। 5 सुंदर बातें अपने पास रख लें। भट्टी में बहुत सारी बातें सुनने को मिली, अब सारी तो न किसी को याद रहेंगी न कोई कर पाएगा। 5 कोई भी सुंदर बात अपने पास रख के उसकी एक प्लानिंग कर लो, इन चीजों पर हमें अभ्यास करना है, ये मेरी कमी है इसको मिटाना है, योग मुझे इस तरह करना है, ये स्वमान लेने हैं। कोई सुंदर बात आपको मिली हो जिससे आपको नशा चढ़ गया हो वो रोज पढ़ना, कुछ बातें पढ़ने की रख लेना अपने पास, सुंदर सुंदर बातें रोज की मुरलियों से भी, ऐसी सभी को नोट करके रखनी है जिनको पढ़ते ही आनंद आ जाए, जिनको पढ़ते ही नशा चढ़ जाए। जैसे मैंने बताई ये बात, मैं भी ये बात सदा ही करता हूं, अब भी करता हूं, बहुत सुंदर बातें अलग से लिख के रखी है मैंने। जैसे ये बात थी, तुम नक्षत्रों से महाबलवान हो, जब भी मैं पढ़ता हूं नशा चढ़ जाता है, ऐसी बातें सभी लिख के रखना। तो एक सिंपल प्लान बनाना, और हर 15 दिन में उसे रिवाइज करना, यानी अपने को याद दिलाना, चेक करना कितना कर रहे हैं, क्या मिस है, उसमें कुछ चेंज लानी हो चेंज लाना, क्योंकि ये बात सभी को अच्छी तरह ज्ञात हो, एक ही चीज सदा नहीं चलती, अच्छी से अच्छी चीज भी बोर करेगी आपको, उसमें परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। और रोज की जो हमारी साकार मुरली है और संडे की अव्यक्त मुरली, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उनके आधार से हम चेंज करते चले अपने प्लान को, तो सदा नया उमंग रहेगा पुरुषार्थ का और ढिलाई नहीं आएगी।
वक्त हो रहा है बता जी, फिर भी मैं 2 प्रश्न चाहूंगा कि ये इम्पोर्टेंट हैं। एक प्रश्न आया है कि बाबा के मुरली में आता है कि जो आज हो रहा है वो 5000 साल के बाद रिपीट होगा, तो जो दुख आज हमने भोगा क्या वो दोबारा भोगना पड़ेगा? तो आज 5000 साल के बाद में क्या कुछ फर्क यदि हम ज्ञान में आ गए हैं तो नहीं लाया जा सकता?
बहुत दुखी होते हैं कई लोग, हमारे जीवन में दुख आया है 5000 साल बाद फिर आएगा, बाबा को मिलने का फायदा क्या हुआ? अब ऐसी विधि बताओ ये दुख ना आए। ये दुख तब नहीं आएगा जब इसके दुख के कारण को समाप्त करेंगे, और कारण पीछे का है, पीछे को कोई बदल नहीं सकता, पास्ट को कोई नहीं बदल सकता। अब हमें सीखना ये है कि दुखों का प्रभाव समाप्त हो जाए, जो दुख आया था वो पूरा हो गया, उसका इफेक्ट न रहे। और ये याद रखें कि वो दुख आया था इसलिए भगवान के पास आ गए, वो दुख ना आता तो ये सुखों के दिन भी ना आते, इसे बलिहारी दुखों की। बस ये याद करेंगे तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी, अगले कल्प में फिर वैसा ही होगा। कईयों को भारी तो पड़ता है, भारी पड़ता है, कहते हैं मुरली सुनने को मन नहीं करता, क्यों? बाबा कह ही देता है कल्प हूबहू रिपीट होगा, जब हुआ है फिर होगा, काम तो दुखी होके आते हैं मुरली सुन के, लेकिन ये नहीं तो पूरा हो गया ना, अब भगवान मिल गया इसे याद करो। कल्प कल्प भगवान भी तो मिलेगा ना, दुखी थोड़ा ही आएगा, भगवान मिलेगा, उससे स्वर्ग की राजाई मिलेगी, उसका प्यार मिलेगा, उसका साथ मिलेगा, ये याद किया करें।
पुरुषार्थ हो या सेवा, लौकिक हो या अलौकिक, हर कार्य में सफलता का कोई सुंदर सा मंत्र दीजिए।
मैंने सूत्र बता दिया है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। इसलिए सवेरे उठकर रोज 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, एक हाथ की ताली से हम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रश्न तो लगातार लगे रहेंगे, लेकिन जो सार मिला उस सार को हम समाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी।